पृष्ठ संख्या 96, सप्तम अध्याय का शेष। डेकार्त ने ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए ये प्रमुख प्रमाण दिए हैं। प्रथम है निगमन तर्क। मुझे अपने स्वतः सिद्ध आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, जिस पदार्थ की इतनी सुस्पष्ट और प्रकाशमय अनुभूति हो, वह पदार्थ भी आत्मा के समान ही सत्य होना चाहिए। मुझे ईश्वर की भी सुस्पष्ट अनुभूति हो रही है, अतः निष्कर्ष निकला कि आत्मा के समान ईश्वर का भी सत्य अस्तित्व है। पृष्ठ संख्या 97। आत्मा के और ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि में इतना भेद है कि आत्मा की सिद्धि होती है निर्विकल्प प्रत्यक्ष से, और ईश्वर की सिद्धि होती है निगमनात्मक अनुमान से। द्वितीय है सत्तामूलक अनुभूति का तर्क। ईश्वर के विषय में ज्ञान मात्र से उनकी सत्ता सिद्ध होती है। हमें ईश्वर का ज्ञान होता है, अतः ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर पूर्ण है। यदि उनकी सत्ता न होती तो वे अपूर्ण होते, अतः उनकी पूर्णता में उनकी सत्ता भी अंतर्निहित है। संत एंसेल्म और संत अगस्टाइन ने भी यह तर्क दिया था। डेकार्त ने इसको विशद रूप दिया है। ईश्वर विषयक ज्ञान से उनकी अनिवार्य सत्ता पृथक नहीं की जा सकती। पूर्ण और अनंत की कल्पना में अस्तित्व का भी समावेश हो जाता है। यदि ईश्वर में अस्तित्व की कमी हो तो उस अंश में वे अपूर्ण होंगे, और अपूर्ण ईश्वर वदतो व्याघात है। संसार के सब पदार्थ अपूर्ण हैं, अतः उनके विचार मात्र से उनकी सत्ता प्रमाणित नहीं होती, किंतु ईश्वर पूर्ण है, अतः उनके विषय में विचार मात्र से उनकी सत्ता सिद्ध हो जाती है। यह अनुमान नहीं है, मैं हूँ के समान यह भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। इस अनुभूत की तर्क द्वारा अभिव्यक्ति और पुष्टि करने के कारण इसे सत्तामूलक अनुभूत का तर्क कहा गया है। तृतीय है कार्य कारण भाव मूलक तर्क। कार्य कारण भाव एक स्वतः सिद्ध मौलिक अनुभव है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, बिना कारण के कार्य नहीं होता। असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मेरी बुद्धि में ईश्वर है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। इस विचार का भी कोई न कोई कारण होना चाहिए। यह विचार पूर्ण और अनंत ईश्वर का विचार है, अतः इसका कारण भी पूर्ण और अनंत होना चाहिए, क्योंकि कारण कार्य से न्यून नहीं हो सकता। अतः ईश्वर को ही इस विचार का कारण मानना पड़ता है। यदि ईश्वर नहीं होते तो हमारी बुद्धि में पूर्ण और अनंत ईश्वर का विचार भी नहीं उत्पन्न होता। यह विचार इंद्रिय अनुभव से उत्पन्न नहीं होता। इंद्रियां कभी पूर्ण और अनंत का ज्ञान नहीं कर सकती, वे केवल परिमित और अस्त व्यस्त विशेषों का ही संवेदन कर सकती हैं। इस संवेदन में ज्ञान का अंश क्षीण और धुंधला रहता है, इसीलिए इंद्रिय अनुभव को बुद्धि द्वारा पुष्ट करना पड़ता है। यह विचार मेरी बुद्धि की कल्पना भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि परिमित, अल्पज्ञ और अपूर्ण है, और यह विचार पूर्ण और अनंत ईश्वर विषयक विचार है। अतः स्वयं ईश्वर को ही इस विचार का कारण मानना पड़ता है, इसलिए ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। सत्ता मूलक अनुभूति के तर्क द्वारा ईश्वर की सत्ता ईश्वर विषयक विचार मात्र से सिद्ध की गई है। पृष्ठ संख्या 98। ईश्वर की पूर्णता में सत्ता का भी समावेश है। इस प्रकार का निर्विकल्प अनुभूति के आधार पर यह तर्क उपस्थित किया गया है कि यदि ईश्वर की सत्ता नहीं होती तो वे पूर्ण नहीं होते, और चूंकि ईश्वर की पूर्णता निर्विकल्प अनुभूति से सिद्ध है, अतः ईश्वर की सत्ता भी सिद्ध है। कार्य कारण भाव मूलक तर्क द्वारा ईश्वर को मानवीय बुद्धि में उत्पन्न ईश्वर विषयक विचार का कारण मानकर उनकी सत्ता सिद्ध की गई है। यही इन दोनों तर्कों में भेद है। चतुर्थ है निमित्त कारण मूलक तर्क। यह तर्क कार्य कारण भाव मूलक तर्क का ही रूपांतर है। भेद इतना ही है कि कार्य कारण भाव मूलक तर्क ईश्वर को मानवी बुद्धि में उत्पन्न ईश्वर विषयक विचारक का कारण मानकर ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है, और निमित्त कारण मूलक तर्क ईश्वर को इस संपूर्ण सृष्टि का निमित्त कारण मानकर उनकी सत्ता सिद्ध करता है। इन दोनों तर्कों में हम कार्य से कारण की ओर जाते हैं। कार्य के आधार पर कारण की सत्ता सिद्ध करते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि परिमित और शांत है, यह जड़ है और कार्य रूप है। अचित या जड़ तत्व स्वयं सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, वह केवल उपादान कारण बन सकता है, और चेतन निमित्त कारण की अपेक्षा रखता है। बिना चेतन निमित्त कारण के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। यह निमित्त कारण ईश्वर है। यदि परिमित और शांत की सत्ता है तो अपरिमित और अनंत भी होना चाहिए। यदि कार्य है तो कारण भी होना चाहिए, और ईश्वर ही यह अपरिमित और अनंत कारण है। ईश्वर कारण रूप ही है, या कॉज सुई, वे स्वयं कार्य रूप नहीं हैं। यदि उनको भी कार्य माना जाए तो फिर ईश्वर का भी कोई अन्य कारण खोजना पड़ेगा, और इस प्रकार अनवस्था दोष आएगा। ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए डेकार्त बहुत प्रयत्नशील और उत्सुक हैं। वे ईश्वर सिद्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि ईश्वर को सिद्ध किए बिना उनका दर्शन मैं हूँ से आगे नहीं बढ़ता। ज्ञाता की अनिवार्य सत्ता सिद्ध करने के बाद बाह्य जगत की सत्ता सिद्ध करने के लिए ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। ईश्वर की सत्ता सिद्ध होते ही बाह्य जगत की सिद्धि भी ईश्वर की सृष्टि के रूप में हो जाती है। बाह्य जगत प्रवंचना नहीं हो सकता, क्योंकि वह ईश्वर सृष्ट है और ईश्वर प्रवंचक नहीं है। पृष्ठ संख्या 99। यहाँ पर डेकार्त के सामने दो कठिन समस्याएं उपस्थित हैं। प्रथम यह कि ईश्वर की सिद्धि जगत के निमित्त कारण के रूप में की जा रही है और जगत की सिद्धि ईश्वर की सत्य सृष्टि के रूप में। क्या यह अन्योन्याश्रय दोष नहीं है? डेकार्त का उत्तर है कि मैं हूँ की स्वतः सिद्धि होती ही एक साथ ईश्वर और जगत दोनों की सिद्धि हो जाती है। वैसे जगत अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर निर्भर है, ईश्वर अपनी सत्ता के लिए जगत पर निर्भर नहीं। ज्ञाता की सिद्धि होते ही गे के रूप में जगत की भी सिद्धि हो जाती है और ईश्वर सृष्ट होने के कारण उसकी सत्ता और पुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार ईश्वर विषयक विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाती है और सृष्टि का निमित्त कारण होना उनकी सत्ता के लिए एक प्रमाण है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि ईश्वर को जगत का निमित्त कारण न माना जाए तो ईश्वर की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी या ईश्वर सृष्टिकर्ता ही न रहेंगे। अस्तु, यदि इसे समस्या का समाधान मान ले तो भी एक दूसरी और जटिल समस्या है। वह यह है कि ज्ञाता की सत्ता से ईश्वर की सत्ता और ईश्वर की सत्ता से ज्ञाता की सत्ता सिद्ध की गई है। इस अन्योन्य आश्रय दोष का समाधान कैसे होगा? डेकार्त का उत्तर है कि वास्तव में ज्ञाता की और ईश्वर की दोनों की ही सत्ता अनुमान से सिद्ध न करके निर्विकल्प प्रत्यक्ष से सिद्ध की गई है। मैं ज्ञाता हूँ, अतः मेरी सत्ता अनिवार्य है, यह निगमन तर्क नहीं है, किंतु स्वतः सिद्ध अनुभूति है। ईश्वर की पूर्णता में उनकी सत्ता अंतर्निहित है, यह निगमन तर्क नहीं है, यह भी स्वतः सिद्ध अनुभूति है। अतः ज्ञाता और ईश्वर दोनों स्वतः सिद्ध हैं और इनकी सिद्धि में अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता। यदि यह कहा जाए कि अनुभूत होती है आत्मा को और आत्मा स्वयं अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर आश्रित है, अतः आत्मा में होने वाला निर्विकल्प प्रत्यक्ष जो अपनी सत्ता के लिए स्वयं ईश्वर पर निर्भर है, ईश्वर की सत्ता कैसे सिद्ध करेगा? तो इसका उत्तर है कि सत्ता और ज्ञान के दृष्टिकोणों का भेद समझ लेने पर इस शंका का समाधान हो जाता है। सत्ता की दृष्टि से ईश्वर पहले हैं और आत्मा बाद में। ज्ञान की दृष्टि से आत्मा की सत्ता का ज्ञान पहले होता है और ईश्वर की सत्ता का ज्ञान बाद में। ईश्वर की सत्ता प्राथमिक है और आत्मा अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर आश्रित है, किंतु ज्ञान होता है पहले आत्मा की सत्ता का और फिर ईश्वर की सत्ता का। ईश्वर स्वानुभूत की सत्ता के कारण या काज है। रेशियो इसेंडी और स्वानुभूत ईश्वर की सत्ता के ज्ञान का कारण है, अर्थात रेशियो कॉग्नोसेंडी। पृष्ठ संख्या 100। इस प्रकार डेकार्त तत्वत्रय अर्थात ईश्वर चित और अचित को सिद्ध करते हैं। ये तीनों तत्व अर्थात द्रव्य हैं, किंतु डेकार्त की द्रव्य की परिभाषा के अंतर्गत ये तीनों नहीं आते। डेकार्त के अनुसार द्रव्य वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो और जिसके ज्ञान के लिए अन्य वस्तु की अपेक्षा न हो। इस परिभाषा के अनुरूप तो ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य है, क्योंकि केवल उन्हीं की स्वतंत्र सत्ता है। फिर चित और अचित को, जो दोनों अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर आश्रित हैं, द्रव्य कैसे कहा जाता है? डेकार्त इस विषम परिस्थिति से बचने के लिए द्रव्य के दो विभाग कर देते हैं, निरपेक्ष या पर द्रव्य और सापेक्ष या अपर द्रव्य। ईश्वर ही एकमात्र स्वतंत्र और निरपेक्ष द्रव्य है। चित और अचित दोनों सापेक्ष द्रव्य है, क्योंकि दोनों अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर की अपेक्षा रखते हैं। इन दोनों को द्रव्य इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों परस्पर सापेक्ष न होकर केवल ईश्वर सापेक्ष हैं। चित और अचित दोनों परस्पर स्वतंत्र हैं। यदि वे परतंत्र हैं तो केवल ईश्वर पर। ईश्वर परतंत्र होने से उनके द्रव्यत्व की क्षति नहीं होती। इस प्रकार तीन द्रव्य सिद्ध हुए। एक तो ईश्वर जो पर द्रव्य एब्सोल्यूट सब्सटेंस है, दूसरा जीव जो चेतन द्रव्य या थिंकिंग सब्सटेंस है, और तीसरा जड़ जगत जो विस्तृत द्रव्य या एक्सटेंडेड सब्सटेंस है। प्रत्येक द्रव्य के गुण और पर्याय होते हैं। ईश्वर के अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं। चित का मूल गुण है चैतन्य और अचित का मूल गुण है विस्तार। चित और अचित को परस्पर स्वतंत्र और विलक्षण मानने के कारण, इस द्वैतवाद के कारण डेकार्त को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। यदि चित और अचित परस्पर भिन्न और स्वतंत्र हैं तो उनका संयोग कैसे हो सकता है? डेकार्त ने इस विषय में ईश्वर की शरण ली है, किंतु ईश्वर भी इस द्वैतवाद के दोषों को मुक्ति नहीं दे सके। पाश्चात्य और पौरस्त सभी द्वैतवादों में यह दोष आता है और कोई भी द्वैतवाद इसका संतोषजनक समाधान नहीं कर पाया है। जैन दर्शन के जीव और अजीव, सांख्य के पुरुष और प्रकृति, रामानुज के चित्त और अचित सभी इस दोष से ग्रस्त हैं। इसका एक ही समाधान है कि इन दोनों को परस्पर स्वतंत्र और विलक्षण द्रव्य न मानकर ईश्वर का आभास मात्र माना जाए और यह समाधान द्वैतवादियों को अमान्य है। फलतः द्वैतवादियों ने इन दोनों के संबंध के विषय में अपनी अपनी असंगत कल्पनाएं की हैं। डेकार्त की कल्पना है चिद चित संयोगवाद, अर्थात चित और अचित में परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध। पृष्ठ संख्या 101। एक की क्रिया से दूसरे में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, क्यों? इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। डेकार्त की एक और असंगत कल्पना है, वह यह कि शरीर की एक विशेष ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड इन दोनों की जीव और शरीर की मिलनशैया है। जड़ जगत एक उद्देश्यहीन यंत्र है जिसे ईश्वर रूपी चेतन चालक चला आ रहा है। जड़ में चैतन्य नहीं और चित में परिमाण या विस्तार या आकार नहीं। पशुओं में चैतन्य नहीं, क्योंकि डेकार्त के अनुसार चैतन्य और विवेक एक ही हैं। इसलिए जीवित पशु भी यंत्रवत है, मनुष्य का शरीर भी यंत्रवत है। टूटते हुए यंत्र की खड़खड़ाहट और मुमूर्षु पशु की चित्कार में कोई अंतर नहीं। पशुओं में और मानव शरीर में स्नायु और मांसपेशियों के संचालन से गति उत्पन्न होती है, किंतु मनुष्यों में चैतन्य है और यही मानव जीवन की महिमा है। देह का प्रभाव चैतन्य पर और चैतन्य का प्रभाव देह पर क्यों पड़ता है? शरीर पर आघात पहुंचने से चैतन्य लुप्त क्यों हो जाता है और चैतन्य के चिंताग्रस्त होने से शरीर दुर्बल क्यों होता है? यदि प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं सिवाय इसके कि ईश्वर की यही इच्छा है कि एक की क्रिया से दूसरे में प्रतिक्रिया हो। यह है डेकार्त के दर्शन का परिचय। पहले कहा जा चुका है कि डेकार्त का महत्व उनकी संदेह पद्धति और ज्ञाता के अनिवार्य अस्तित्व इन दो बातों के कारण है। यह दर्शन का मूल आधार है। डेकार्त ने यह पक्की नींव डाली है। इस नींव पर उन्होंने जो प्रासाद बनाया वह ढह चुका है, किंतु नींव अभी भी वैसी ही स्थित है और दार्शनिक प्रासाद इसी पर बनते बिगड़ते रहते हैं। डेकार्त ने आत्मा की स्वतः सिद्धता और स्वप्रकाशता प्रमाणित करके भी आत्मा का महत्व नहीं समझा। आत्मा और अद्वैत तत्व है। यह अद्वैत तत्व ही स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश है। यह विचार जीवात्मा क्या स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश होगा? आत्म बहुत्ववाद हास्यास्पद दोष है। इसी प्रकार चित और अचित को द्रव्य मानना भी भारी भूल है। यह द्वैतवाद अनेक दोषों का मूल है। अचित को यंत्रवत और निरुद्देश्य समझना तथा पशुओं को अचेतन मानना भी विचित्र है। ईश्वर के लिए दिए गए प्रमाण भी अकाट्य नहीं है। आगे चलकर कांट ने इन सब का खंडन किया है। इन सब प्रमाणों से केवल ईश्वर विषयक विचार की सत्ता सिद्ध होती है, स्वयं ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती। इनसे यही सिद्ध होता है कि हमारे विचार में ईश्वर की सत्ता है। यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर की वास्तविक सत्ता भी है। यदि मैं विचार करूं कि मेरी जेब में 100 रुपये हैं, पृष्ठ संख्या 102, तो इससे मेरी जेब में सचमुच 100 रुपये नहीं आ जाते। ईश्वर सृष्टिकर्ता भी सिद्ध नहीं होते, क्योंकि यदि कार्य से कारण की सत्ता मानी जाए तो अधिक से अधिक यही सिद्ध हो सकता है कि इस सृष्टि कार्य का कारण अवश्य होना चाहिए। यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि वह कारण पूर्ण अनंत और चेतन ईश्वर ही है? और फिर डेकार्त ने ईश्वर का स्वरूप भी ठीक ठीक नहीं समझा। ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना और उनका सृष्टि से ऊपर दिव्य लोक में निवास आदि मानना कोरी कल्पना है। इससे सृष्टा के साथ सृष्टि का कोई अंतर संबंध स्थापित नहीं हो पाता। पुनश्च चित और अचित का क्रिया प्रतिक्रियावाद भी असंगत और दोषपूर्ण है। इन सब दोषों और असंगतियों के होते हुए भी डेकार्त अपनी संदेह पद्धति और ज्ञाता की स्वप्रकाशता के सिद्धांत के कारण पाश्चात्य दर्शन में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रहेंगे। अगला हेडिंग है देहात्म निमित्तवाद या ओकेजनलिज्म। दार्शनिक हैं आर्नाल्ड ग्यूलिंग्स, 1624 से 1669, और निकोलस मेलेब्रांच, 1638 से 1715। डेकार्त के उत्तराधिकारियों में ग्यूलिंग्स और मेलेब्रांच प्रसिद्ध हैं। डेकार्त के देह और आत्मा के द्वैतवाद को पिघलाकर इन लोगों ने क्रिया प्रतिक्रियावाद के दोषों को दूर करने का प्रयास किया। डेकार्त ने तो यही कहकर संतोष कर लिया था कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है कि देह और आत्मा के संयोग के कारण इन दोनों में पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया हो। किंतु डेकार्त के इन उत्तराधिकारियों ने ईश्वर पर और अधिक भार डालना ही उचित समझा। इनको ईश्वर की इच्छा से ही संतोष नहीं हुआ। उन्होंने ईश्वर पर सक्रिय उत्तरदायित्व का भार डालना आवश्यक माना। इन दोनों ने कहा कि यदि देह और आत्मा परस्पर भिन्न है तो उनका वास्तविक संयोग नहीं हो सकता। देह का धर्म है गति और आत्मा का धर्म है चैतन्य। समस्या यह है कि शारीरिक गति का प्रभाव चैतन्य पर और चैतन्य का प्रभाव शारीरिक गति पर कैसे पड़ सकता है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर इंद्रिय संवेदन होता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान में परिणत होता है। ज्ञान के आदेशानुसार विविध अर्थों की प्राप्ति या परिहार के लिए शरीर कर्म करता है। आत्मा का धर्म है ज्ञान और शरीर का धर्म है कर्म। ज्ञान और कर्म में स्वतः परस्पर संबंध नहीं हो सकता, अतः इस संबंध का कारण ईश्वर को ही मानना पड़ेगा। किसी आत्मा में प्रत्यक्ष ज्ञान होते ही ईश्वर उस आत्मा के शरीर को तदनुसार कर्म करने की प्रवृत्ति प्रदान करता है और इसी प्रकार किसी शरीर में कर्म होता देखकर ईश्वर उस शरीर की आत्मा को तदनुसार संवेदन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। पृष्ठ संख्या 103। अतः वास्तव में न तो ज्ञान का कारण आत्मा है और न कर्म का कारण शरीर, क्योंकि दोनों के ही वास्तविक कारण हैं ईश्वर। मेरी इच्छा या आदेश से मेरा शरीर कर्म नहीं करता, ईश्वर की इच्छा से करता है। मेरी इच्छा निमित्त मात्र है। मेरे शारीरिक कर्मों के सख्त कारण ईश्वर हैं। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष में मेरे ज्ञान का निमित्त मात्र है, उसके सख्त कारण है ईश्वर। ग्यूलिंग्स ने कहा, ईश्वर के कारण मेरा शरीर कर्म करता है। मेले ब्रांच ने कहा, ईश्वर के कारण मेरी आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। इस निमित्तवाद के कारण आत्मा और शरीर तो क्रमशः ज्ञान और कर्म के निमित्त मात्र बनकर छूट जाते हैं, किंतु ईश्वर को असंख्य आत्माओं और असंख्य शरीरों के प्रत्येक ज्ञान और कर्म के अवसर पर सक्रिय उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। इस हास्यास्पद सिद्धांत से एक लाभ अवश्य हुआ, वह यह कि डेकार्त का द्वैतवाद पिघला दिया गया। चित और अचित अब स्वतंत्र द्रव्य न रहकर निमित्त मात्र रह गए। स्पिनोजा के अद्वैतवाद की भूमिका तैयार हो गई। ग्यूलिंग्स ने आत्मा के द्रव्य तत्व का अपहरण किया। मेले ब्रांच ने शरीर के द्रव्यत्व का, स्पिनोजा ने दोनों के द्रव्यत्व का। अध्याय 7 समाप्त।